ॐ शांति। पुराने संस्कारों का संस्कार, हम बाबा के पास आए हैं अपने पुराने संस्कारों का परिवर्तन करने के लिए, और साथ साथ दैवी संस्कारों को धारण करने के लिए। इसको कह सकते हैं स्वयं का परिवर्तन करने के लिए हम बाबा के पास आए हैं। परिवर्तन जो शब्द है उसका अर्थ है परिवर्तन, परियो जैसा व्यवहार, फरिश्तो जैसा व्यवहार, उसको कहते हैं परिवर्तन करना। तो पुराने संस्कारों का संस्कार हमें करना है। हम सभी ब्रह्मा वत्स प्रभु पालना में पल रहे हैं। हर रोज ज्ञान और योग की पालना हमें भगवान से मिलती है। हर रोज योगाभ्यास करते हैं, हर रोज मुरली सुनते हैं, फिर भी कभी कभी जब हम कारोबार में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो विकारों के जो अंश हैं वो दिखाई देते हैं। थोड़ा रोब आ जाता है, थोड़ी फीलिंग आ जाती है, कभी थोड़ा सा लोभ भी आ जाता है। तो मोटे रूप से तो हमने विकारों को जीत लिया है, लेकिन विकारों के जो अंश हैं, विकारों के जो छोटे बाल बच्चे हैं, उनको भी हमें खत्म करना है, उनका भी हमें संस्कार करना है। कोई शरीर छोड़ता है तो उसके शरीर का संस्कार अग्नि से करते हैं। तो यहां आत्मा के जो पुराने संस्कार हैं, उसका संस्कार योग अग्नि से होता है। तो योग अग्नि साधारण योगाभ्यास में इतनी प्रज्वलित नहीं होती है, उसके लिए आवश्यकता है ज्वालामुखी योगाभ्यास को बढ़ाने के। बाबा ने स्पष्ट इशारा दिया है, अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है, अभी जो समय चल रहा है वो ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने का चल रहा है। तो ज्वाला स्वरूप योग का अभ्यास कैसे करें? योग अग्नि प्रज्वलित कैसे हो वो स्पष्ट जानना बहुत जरूरी है। देखो, सोने सोने को हम तपाते हैं उसको गलाने के लिए, उसको अग्नि लगाते हैं तो सोना गर्म भी होता है, नरम भी होता है, लाल हो जाता है, लेकिन वो मेल्ट तब होता है जब उसका मेल्टिंग पॉइंट पहुंचता है। पैसे हमारे पांचों विकारों से संबंधित 63 जन्मों के कड़े संस्कार हैं, कठोर संस्कार हैं, उनका परिवर्तन करने के लिए, उनका संस्कार करने के लिए आवश्यकता है ऐसे ज्वालामुखी योगाभ्यास को बढ़ाने के। तो ज्वालामुखी योग को ज्वालामुखी योग क्यों कहते हैं? इसका नाम ज्वालामुखी योग क्यों पड़ा है? जैसे धरती से ज्वालामुखी फटती है, उसमें जो लावा रस निकलता है उसका टेम्परेचर इतना हाई होता है, इतना हाई होता है जो कैसी भी कठिन से कठिन चीज उसके संपर्क में आती है सेकंड में वो पिघलने लगती है। चाहे कठिन लोहा आवे, चाहे पत्थर आवे, एक सेकंड में वो पिघल जाता है, इतना टेम्परेचर उसका है होता है। तीन से ज्वालामुखी योगाभ्यास में योग की अग्नि इतनी प्रज्वलित होती है तेज, उसमें हमारे कई जन्मों के संस्कार भस्म हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं। विशेष जब हम बैठक का योग करते हैं, अमृत वेले या नुमा शाम का योग करते हैं, उसमें हमें ऐसी शक्तिशाली योग की अनुभूति करनी ही है, ऐसी दृढ़ता से बैठें, क्योंकि उसके लिए एकांतवासी बनकर एकाग्रता की आवश्यकता है। वो कर्म करते समय संभव नहीं होता है, इसलिए कर्म करते समय फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करें और बैठक के योग में ऐसी ज्वालामुखी योगाभ्यास की अनुभूति को बढ़ाते चलें। अभी ऐसे ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की अनुभूति करने के लिए हमें कौन सी बातों पर प्रसाद करना होगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। इनसे ज्वालामुखी योगाभ्यास की अनुभूति करने के लिए विशेष 5 बातों पर हमें दिल से अभ्यास करना होगा, गारंटी है आपका योगाभ्यास शक्तिशाली होता जाएगा। हम मधुबन निवासी एक बार बाप दादा से मिल रहे थे मेडिटेशन हॉल में, पांडव भवन में, तो बाबा से प्रश्न पूछा कि बाबा मेरा योग शक्तिशाली है या नहीं, कैसे पता चले? शक्तिशाली योग की क्या निशानी है? तो बाबा ने शक्तिशाली योग की 2 निशानियां बताई थी। शक्तिशाली योगाभ्यास में योग एक अग्नि के रूप में अनुभव होता है और उस प्रखर अग्नि में विक्रम भस्म हो रहे हैं, ऐसा अनुभव एक तरफ हमें होता है और दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की बहुत अच्छी तरह से अनुभूति होती है। हल्केपन की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि सिर पर जो पापों का बोझ है वो कम हो रहा है, इसलिए लाइटनेस हल्केपन की अनुभूति होती है। और खुशी की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हम अपने संपूर्णता के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ते जाते हैं, इसलिए हमें खुशी होती है। तो ऐसी ये दो प्रकार की अनुभूतियां जब हमें होती है तब कहेंगे कि मेरा योग शक्तिशाली है। तो इस योगाभ्यास को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो पांच बातों पर इसके लिए अभ्यास करना जरूरी है। तो पहली बात, ऐसी ज्वालामुखी योग की अनुभूति करने के लिए पहली बात है बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली आत्म अनुभूति को बढ़ाते रहना जरूरी है। बहुत गहराई की अर्थात आत्म अनुभूति अर्थात एकदम स्वयं में खो जाएं, डूब जाएं, समा जाएं और अपने अस्तित्व को अच्छी तरह से पहचाने, देखें और अनुभव करें कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, ये चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। देखना और उसके बाद उसका अनुभव करना। तो जैसे जैसे हम इसका अनुभव करते हैं उसकी गहराई बढ़ती जाती है, शरीर का भान भूलता जाता है और आत्मा का भान बहुत अच्छी तरह से बढ़ता जाता है। असली भान है आत्मा का भान, शरीर का भान ये नकली है। असली जो दागिने होते हैं ना सोने के, वो अच्छे लगते हैं, नकली अच्छे नहीं लगते हैं। हालांकि जो नकली आभूषण होते हैं वो देखने के लिए बहुत सुंदर लगते हैं, एकदम चमकते हैं, लेकिन उसके भेंट में असली दागिने ही हमें अच्छे लगते हैं। इसलिए शरीर का रूप ये झूठा स्वरूप है और आत्मा का स्वरूप जो है वो असली स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। तो झूठा कोई भी भान हमें न रहे, इसलिए कहते झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। ये काया झूठी है, असली मान असली भान आत्मा का है। झूठी काया और झूठी माया, ये माया भी झूठी है। इस संसार में जो पांच विकार है वो भी झूठे हैं और उसने सारा संसार ही झूठा बना दिया है। तो इसलिए हमें असली स्वरूप में टिकने का अभ्यास गहराई से बढ़ाते जाना है। कहते हैं जब तक खुद में नहीं खोज सकते हैं खुदा में नहीं खोज सकते हैं। जितना खुद में खो जाते हैं उतना ही खुदा में खो सकते हैं। इसलिए एकांत में बैठकर हमें बहुत अच्छी तरह से आत्मा का दर्शन करना है, आत्मा के भान में स्थित हो जाना है, शरीर के भान को भूलते जाना है, ठीक है ना। और शक्तिशाली आत्म अनुभूति अर्थात स्वयं को केवल आत्मा नहीं हमें समझना है, स्वयं को शक्तिशाली आत्मा अनुभव करना है। जब परम धाम में बाबा के पास बाजू में बैठते हैं तो बाबा ज्ञान सूर्य के रूप में देखें और स्वयं को मास्टर ज्ञान सूर्य के रूप में अनुभव करें, या बाबा को ऑलमाइटी के रूप में अनुभव करें, मैं आत्मा भी मास्टर ऑलमाइटी हूं, इस शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे तभी आप बाबा से अथाह शक्तियां खींच सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं और परिणाम स्वरूप ऐसा ज्वालामुखी योगाभ्यास की अनुभूति आपको हो सकती है। तो आत्म अनुभूति को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है तो वो सहज अनुभव हो, नेचुरल अनुभव हो और एक सेकंड में हम उसमें स्थित हो जाए, ऐसा अभ्यास हमको बढ़ाना है। क्योंकि हमारी 63 जन्मों की आदत बन चुकी है देह समझने की, गलत आदत हो चुकी है, उसको हमें सुधारना है, उसमें को हमें परिवर्तन करना है। तो उसके लिए बहुत अच्छी तरह से एकांत में बैठकर आत्मा के पाठ को बहुत रटते जाना है, घोटते जाना है, रिपीट करते जाना है, अनुभव करते जाना है। तो जैसे जैसे आत्मा का भान हमारा बढ़ता जाता है तो बाबा की याद हमें सहज अनुभव होती है। क्योंकि देह समझते हैं तो देह की दुनिया, देह के पदार्थ, देह के संबंध याद आते, और आत्मा समझते ही आत्मा के पिता, आत्मा के गुण, आत्मा का घर ऑटोमेटिक हमें याद आने लगता है और बाबा की याद भी सहज होने लगती है। इसलिए बार बार हमें अपने सत्य स्वरूप को, असली स्वरूप को देखने का अभ्यास करना है और उसमें स्थित रहने का भी बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करते जाना है। समझा? इसलिए कहते हैं जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। क्यों खात्मा होता है? क्योंकि आत्मा समझते ही बाबा की याद आती है और हमारे विकर्म भस्म होने लगते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हो गया? अभी दूसरी बात, ज्वालामुखी योगाभ्यास की अनुभूति करने के लिए बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली परमात्म अनुभूति को बढ़ाते रहना जरूरी है। तो बहुत गहराई की परमात्म अनुभूति अर्थात परम धाम में बाबा के पास जाकर हमें बहुत गहराई से देखना है बाबा के स्वरूप को, कि बाबा का स्वरूप कितना गजब का स्वरूप है, बाबा की पर्सनालिटी भी कितनी गजब की पर्सनालिटी है। हम देखते हैं यहाँ बाबा आते हैं तो बाबा के स्वरूप से हमें दिखाई देता है कि बाबा का स्वरूप इतना शक्तिशाली है। तो परमात्मा का स्वरूप अर्जुन ने जब देखा, साक्षात्कार जब उसको हुआ तो अर्जुन वर्णन कर रहा था परमात्मा का स्वरूप बहुत तेजोमय है, बहुत तेजोमय है जो मैं देख नहीं सकता हूं, इतना तेजोमय परमात्मा का स्वरूप है। अभी तेजोमय अगर होता तो परमात्मा तो हमारा बाप है, उसको तो हम देख भी नहीं सकते। वो हमारा बाप है, उसकी पालना भी हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन परमात्मा का ऐसा शक्तिशाली ज्ञान, सूर्य का रूप जो है, हमें बुद्धि रूपी नेत्र से देखना है और बहुत अच्छी तरह से हमें अनुभव करना है। समझा? तो उसके लिए हमें क्या करना है? परम धाम में बाबा के पास में बैठ जाएं और बहुत नजदीक से बाबा के स्वरूप को देखे कि बाबा का स्वरूप, बाबा की पर्सनालिटी, बाबा का व्यक्तित्व कैसा है आखिर भी। क्योंकि बाबा स्पष्ट मुरली में कहते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं, थोड़े बच्चे मुझे यथार्थ रीति से जानते हैं और यथार्थ रीति से याद करते हैं। जो मेरे ढेर बच्चे हैं ना, उसमें से थोड़े बच्चे यथार्थ रीति से याद कर सकते हैं। ऐसा क्यों कहते भाई? हम बाबा को नहीं जानते इसलिए तो यहां बैठे हैं। तो इसका मतलब कुछ गुह्य राज छिपा हुआ है जिसको समझना बहुत जरूरी है। तो बाबा के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से पहचानना, बाबा के स्वरूप को अच्छी तरह से पहचानना और बाबा के शक्तियों को, विशेषताओं को जानना। तो बहुत नजदीक से परम धाम में जाकर बाबा के स्वरूप को बुद्धि रूपी नेत्र से देखें
कि आखिर भी बाबा का स्वरूप कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। ऐसा सुंदरता के सागर परमात्मा को हमें विजुलाइज करना है परम धाम में, और विजुलाइज करने के बाद में उनसे शक्तियां हमें प्राप्त करते जाना है, समझा। तो इसलिए बाबा है बिंदी, लेकिन उस बिंदी में सात सिंधु समाये हुए हैं, सात सागर समाये हुए हैं। कितनी पावरफुल वो बिंदु होगी आप सोच सकते हैं, पावरफुल बिंदी होगी ना वो। तो आप सोचो कि सारा संसार जिसके मुट्ठी में है, सारा संसार को चलाने की ताकत जिसके पास है, वो कितना पावरफुल होंगे। हमने बाबा कह के बाबा को ऑर्डिनरी कर दिया। बाबा तो हैं, लेकिन कौन सी वो हस्ती है जिसके मुट्ठी में सारा संसार है। बाबा कहते हैं, मैंने हरेक को पार्ट अपना अपना दिया हुआ है, जो पार्ट दिया है वो आत्माएं बजा रही है। आप सोचो ड्रामा का डायरेक्टर क्रिएटर कंट्रोलर है जो है, वो कितनी पावरफुल हस्ती होगी आप सोच सकते हैं। तो बाबा का स्वरूप सत्यम शिवम सुंदरम तीनों रूप में गाया जाता है। सत्यम अर्थात वो सत्यता के सागर हैं, सारे संसार को सत्यता की शक्ति प्रदान करते हैं, और सत्य स्वरूप में टिकाते हैं, और सत्योगी नई दुनिया इस संसार में लाते हैं। कितने वो सत्यवादी होंगे, कितने उनों में सत्यता होगी आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। वो सत्यता के सागर थे, ठीक है ना। और सुंदरता के वो सागर हैं, सारे आत्माओं को सुंदर बनाने का ठेका बाबा ने लिया है। आप सोचो सारे संसार को जो सुंदर बनाने वाला है वो कितना सुंदर होगा, हैं जी। सुंदरता का वो सागर है, सभी आत्माओं पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्यूरिटीज हैं, उसको हटाने के लिए हर कोई प्रयास करता है, लेकिन परमात्मा जो है वो सुंदरता के सागर है, और जन्म मरण से वो सदा न्यारे रहते हैं, है ना। इतनी बड़ी हस्ती ने हमें अपना बनाया है, हम कितने भाग्यशाली हैं भाई, हैं जी, है कि नहीं। तो तालियां तो बजाओ जरा, तालियां जोर से तालियां बजाओ जरा, अच्छी तरह से बजाओ बजाओ। बाबा ने कहा मैंने करोड़ों में एक एक का सिलेक्शन किया है, करोड़ों आत्माओं को अनदेखा किया है, और आप पर नजर उसकी पड़ी। कितने भाग्यशाली आप हैं बताओ। सारे संसार को भाग्य बांटने वाले भगवान ने हमें ढूंढ लिया है, और हमें अपनी गोदी में बिठा दिया है, और हमें वरदानों से पालना दे रहे हैं। कितने भाग्यशाली है भाई बताओ। संसार उनके भाग्य के गीत गा रहा है, और वो हमारे भाग्य के गीत मुरली में गा रहा है। हर रोज मुरली में आप देखेंगे महिमाओं के फूलों की माला हम बच्चों को पहनाते हैं बाबा। कितने भाग्यशाली। और कल्याणकारी, वो कल्याण के सागर हैं, हम बच्चों का कल्याण उन्होंने किया है। तो
दूसरी बात है, बहुत गहराई की और शक्तिशाली परमात्म अनुभूति को बढ़ाना। बहुत नजदीक बाबा के पास परम धाम में जाकर बैठें और बाबा के स्वरूप को गहराई से देखें कि आखिर भी बाबा का व्यक्तित्व कैसा है, बाबा की पर्सनालिटी कैसी है, मन बाबा का कितना सुंदर है, हमेशा स्वतःप्रदान संकल्पों का क्रिएट करता है, और बुद्धि कितनी विशाल है, दिव्य है, सालिम है। सारे संसार को बुद्धि, दिव्य बुद्धि विधाता बाबा है, उनकी बुद्धि कितनी विशाल होगी, दिव्य होगी।
और उनके संस्कार कैसे हैं, बहुत रॉयल संस्कार है, गजब के संस्कार हैं, उनकी पर्सनालिटी ही अलग ही है, एकदम रॉयल्टी ही उनमें है, यूनिक पर्सनालिटी है। तो ऐसा स्वरूप बाबा का हमें परम धाम में देखना है, और शक्तिशाली स्वरूप अर्थात सारे संसार की आत्माओं को शक्ति प्रदान करने की क्षमता उनमें है, सारे संसार की आत्माओं रूपी बैटरियों को वो चार्ज करते हैं, शक्तियों की आध्यात्मिक शक्तियों के सोर्स है, पावर हाउस है। तो ऐसा शक्तिशाली स्वरूप बाबा का हमें परम धाम में देखना है और अनुभव करना है, तभी हमें ऐसी ज्वालामुखी योगाभ्यास की अनुभूति हो सकती है। तीसरी बात, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति को बढ़ाने के लिए हमारा मन और बुद्धि जो है वो ईश्वरीय नशे से और ईश्वरीय खुशी से भरपूर हो। परमात्म मिलन मनाने जा रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती परमात्म शक्ति, उस महाशक्ति को मिलने जा रहे हैं, कितना मन और बुद्धि हमारी खुशी से भरपूर होना चाहिए। तो खुशी से मन बुद्धि जब भरपूर होती है तो योगाभ्यास में बहुत गहन अनुभव, निराले अनुभव हमें होते हैं। लेकिन हमेशा मन बुद्धि खुशी में रहें उसके लिए आवश्यक क्या बात है? हाँ जी, कैसे रहेंगे खुशी में? हमेशा खुशी में रहेंगे तभी बाबा से हमें ऐसी सुंदर और गहन अनुभूतियां होती रहेगी। लेकिन सदा खुशी में रहना चाहते हैं, कैसे रहेंगे बताइए, कोई युक्ति बताइए, जल्दी बताइए बरेली वाले भाई। सदा खुशी में झूमते रहने के लिए स्वामान के सिंहासन पर डटे रहें। भगवान ने हमें ये सिंहासन दिया है स्वामान का, हम होनहार राजे महाराजे रानी महारानियां बैठी यहां, बहुत महान हस्ती महान आत्माएं बैठी हैं। तो महानता आत्मा में बढ़ती रहें, रॉयल्टी आत्मा में बढ़ती रहें, उसके लिए बाबा ने स्वमान का सिंहासन दिया है। इस सिंहासन पर हमें बैठना है, तभी बैठे रहेंगे तभी हमारे जीवन में खुशियां बहुत अच्छी तरह से हमें अनुभूति होती रहेगी। जब सिंहासन हम छोड़ देते हैं तो खुशी हमारी गायब हो जाती है। चेहरे पर हमेशा खुशी हो, एक स्लोगन लिखो, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं। चेहरा कितना भी सुंदर हो उस पर मुस्कुराहट नहीं होगी तो कोई देखना भी नहीं चाहता है। मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं और सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। सत्य ज्ञान मिल गया, सुख मिल गया, लेकिन हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए, वही चेहरे की शोभा है, तभी खुशी का दान हमारे खुशनुमे चेहरे के द्वारा हम अनेक आत्माओं को दे सकते हैं। उदास चेहरा होगा उदासी बांटेगा, खुशनुमा चेहरा होगा खुशी बांटेगा, है ना? तो इसलिए सदा खुशी में रहें। जैसे सेवा केंद्र पर जाते हैं एकदम मस्ती में मस्त होके बाबा की याद में बैठेंगे, बहुत सुंदर गहन अनुभव बाबा आपको कराएंगे। मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। माली बाबा, बागवान बाबा जो है, हर रोज ये बगीचे को ज्ञान और योग के जल से सींचता है। तो वो बागवान क्या चाहता है? मेरे बगीचे का रूहे गुलाब कैसा हो? बहुत खिला हुआ, केवल खिला नहीं बहुत खिला हुआ। क्योंकि हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है खुशियां बांटते रहने की। बोल से नहीं, हमें ज्ञान नहीं देना है, चेहरा बोले, चेहरा खुशी में झूमता रहे तो ऑटोमेटिक अनेक आत्माओं को खुशी मिलती रहेगी। ठीक है, चौथी बात, ऐसे ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की अनुभूति करने के लिए हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता रहे। क्योंकि बाबा कहते हैं जब तक परमात्म प्यार में लीन नहीं होते हैं, समा नहीं जाते हैं, तब तक ऐसी ज्वालामुखी योगाभ्यास की अनुभूति आपको नहीं हो सकती है। भगवान के साथ एकदम कंबाइंड स्वरूप हमें अनुभव करना है, और जब कंबाइंड स्वरूप अनुभव करते हैं तो एक तरफ बाबा प्यार के सागर हैं, तो दूसरी तरफ बाबा शक्तियों के सागर भी हैं। तो प्रेम स्वरूप याद, शक्ति स्वरूप याद में स्वतः ही परिवर्तन होती है, और उसके बाद ऐसे ज्वालामुखी योग की अनुभूति हमें स्वतः ही होती है। तो हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना सदा बढ़ता रहे। आप कहेंगे भाई बाबा से तो हमारा प्यार है, इसमें तो कोई शक नहीं है, प्यार है इसलिए हम बैठे हैं यहां, उसके पालना ले रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जिगरी प्यार मेरे से हो, हड्डी प्यार मेरे से हो, दिल का सच्चा प्यार मेरे साथ हो, फिर आप देखना कैसे सुंदर अनुभव योगाभ्यास में आपको होते हैं। क्योंकि अभी क्या होता है, प्यार हमारा इधर उधर बट जाता है, देहधारियों के संबंध जो भी हमारे होते हैं लौकिक अलौकिक, प्यार हमारा बटा हुआ रहता है। थोड़ा सा बाबा के लिए जरूर होता है, लेकिन सच्चा प्यार, दिल का प्यार जास्ती से जास्ती बाबा के तरफ ट्रांसफर हो, ऐसा होना जरूरी है। प्यार के सागर के बच्चे हैं, सबके साथ प्रेम स्वरूप रहना है, लेकिन सच्चा प्यार केवल एक बाबा के साथ ही हो। उसके लिए क्या करें भाई, हैं जी? संगम माना ही भगवान के संग में रहना, संगम माना ही भगवान के साथ प्यार का सौदा करना, प्यार शेयरिंग करते जाना। तो प्यार शेयरिंग करने के लिए आपके बुद्धि में पांच बातें अगर होगी तो आपका प्यार इधर उधर कहीं जा ही नहीं सकता है, किसी व्यक्ति के पीछे बुद्धि आपकी जा ही नहीं सकती है, वस्तु वैभव के तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। अगर आपके पास ये पांच रियलाइजेशन है, पहला रियलाइजेशन जानना चाहते हैं ना कि नहीं, हाँ जी? पहला रियलाइजेशन है केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है, आत्माओं के प्यार में आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। द्वापर युग से हमने कितने धोखे खाए, माया ने हमें फुटबॉल बना के ऐसा पीटा, ऐसा लताड़ा, कहीं का नहीं रखा। केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल है और अनकॉम्प्लिकेटेड है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आत्माओं के प्यार में तो कितने कंडीशन, कितने कॉम्प्लिकेशंस होती है, और कंडीशन पूरी नहीं होती है तो प्यार खत्म भी हो जाता है, कोई किसी को पहचानता तक नहीं है। केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल और अनकॉम्प्लिकेटेड है। बाबा कहते मुझे केवल सच्चाई चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी, झूठे दिल पर धर्मराज की बाजी। तो हमें दिल में केवल सच्चाई रखनी है, ठीक है? तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही बेहद का प्यार है। आत्माओं का ब्याह तो हद का है, वो गागर है, वो गागर भी खाली है, चलकती रहती है, ये तो सागर है प्यार का। तो बेहोद का प्यार है और निस्वार्थ प्यार है। स्वार्थ का प्यार आत्माओं का होता है, जहां स्वार्थ होता है वहां प्यार होता है। स्वार्थ पूरा होते ही कोई किसी से प्यार नहीं करता है। ये सारा संसार स्वार्थ की डोर से बंधा हुआ है, समझा। निस्वार्थ प्यार करने वाला एक ही परमात्मा इस संसार में है। अविनाशी प्यार है, बेहद का प्यार है और निस्वार्थ प्यार है। चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है, आत्माओं का प्यार तो हमें इम्प्योर बनाता है। शरीर भी इम्प्योर है और आत्मा भी इम्प्योर है, तो भाई प्यार भी तो इम्प्योर होगा ना। अब उनसे प्यार करेंगे तो हम तो इम्प्योर बनेंगे। अब संगम युग में ही हमें आत्मा को प्योर बनाना है, इसलिए परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है ना। और पांचवी बात, परमात्म प्यार ही हमें होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर परम धाम में ले जाता है। आत्माओं का प्यार तो हमें इसी घटिया दुनिया में भटकाता रहता है, मटकाता रहता है। जो टॉप क्वालिटी की आत्माएं होती है वो टॉप फ्लोर पर रहती है, परम धाम में रहती है बुद्धि के द्वारा। ये तो थर्ड फ्लोर है, ये माया की दुनिया है। रहना है तो परम धाम में। तो परमात्म प्यार हमें वहां ले जाता है, होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाता है। आत्माओं का प्यार तो हमें यही घुमाता है बुद्धि को। तो ये पांच अगर महसूसता हमारे पास है तो दिल का प्यार हम किसी के साथ शेयर कर ही नहीं सकते। परम धाम में बाबा बैठे हैं, पहला सर्कल है अष्ट रत्नों का। बाबा कहते हैं इनका जिगरी प्यार मेरे से है। दूसरा सर्कल है 108 आत्माओं का, उनका प्यार है लेकिन थोड़ा कम है, इसलिए दूसरा सर्कल 108 आत्माओं का है। तीसरा सर्कल जो है 16,000 आत्माओं का है, उनका प्यार है लेकिन उससे कम है, इसलिए तीसरा सर्कल दूर वो है बाबा से। और उसके बाद चौथा सर्कल, आप सोच सकते हैं कितना प्यार हमारा उनका होगा। इसलिए हमें बाबा के समीप रखने वाला ये प्यार है। जब समीप रहते हैं तभी बाबा समान बन सकते हैं। सागर के पास बैठते हैं, सागर से शक्तियां लेते हैं, तो मास्टर सागर हम स्वयं को अनुभव करते हैं। इसलिए दिल का सच्चा प्यार बाबा के तरफ हमें ट्रांसफर करते जाना है। जहां प्यार वहां बुद्धि की तार ऑटोमेटिक ट्रांसफर होती है। बुद्धि की तार ऑटोमेटिक जुट जाती है, जोड़नी नहीं पड़ती है। जैसा प्यार होगा ना वैसे बुद्धि की तार जुट जाती है। जितना प्यार उतनी बुद्धि की तार लंबे समय तक जुटी रहती है। तो सारा मदार है बाबा से हमारा प्यार जैसे से जास्ती हो। इसलिए योग के अभ्यास में बहुत सुंदर और गहन अनुभव अगर हम चाहते हैं तो प्यार का परसेंटेज बहुत हो। एक स्लोगन हमेशा याद रखें कि याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा जास्ती से जास्ती हो। याद की यात्रा में हम सभी हैं, याद सारा दिन याद की यात्रा पर दौड़ते रहते हैं, लेकिन याद की यात्रा में बहुत सुंदर अनुभव तब आपको होंगे जब प्रेम की मात्रा, प्रेम का प्रतिशत परसेंटेज मैक्सिमम होगा, तो उसमें आपको बहुत ही सुंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनुभव बाबा कराते हैं। इसलिए हमें ये देखना है, कोई ऐसा स्थान तो नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जहां बुद्धि मेरी बार बार जाती है, बुद्धि का बार बार जाना माना उनसे हमारा सूक्ष्म लगाव है, उनसे हमारा सूक्ष्म प्यार जरूर है। चेक करना है और चेंज करते जाना है, उसको बाबा के तरफ ट्रांसफर करते जाना है, तो फिर आप देखेंगे ऐसी पावरफुल योग की अनुभूति आपको बाबा कराते हैं। और पांचवी बात, ज्वालामुखी योगाभ्यास करने के लिए आवश्यकता है एकांत में बैठकर संपूर्ण एकाग्रता का अभ्यास योग का में होना चाहिए। एकांत में बैठना है और एकाग्रता मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन हमारा केवल बाबा पर ही हो, तभी हमें ऐसी ज्वालामुखी योग की अनुभूति हो सकती है। भाई इतना इसका महत्व क्या है, अगर एकाग्रता उसमें नहीं होगी ना तो हमें ऐसी शक्तिशाली योग की अनुभूति नहीं हो सकती। इसका महत्व इतना क्यों है बताइए, एकाग्रता है जी। ये ज्वालामुखी योग की सीक्रेट ही है एकाग्रता। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं स्पष्ट करने के लिए। मेरे हाथ में पेपर का टुकड़ा है, उसको मैं सूरज की रोशनी में जलाना चाहता हूं। बिल्कुल समर की गर्मी है, मैं 10 दिन से वो समर में धूप में पेपर रखा, वो जल ही नहीं रहा है। अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने उसको जलाना है, जल्दी जलाना है, उसके लिए क्या करना होगा, मैग्नीफाइंग लेंस पकड़ना होगा, सूरज की रोशनी में जाकर कागज के ऊपर मैग्नीफाइंग लेंस को पकड़ना होगा। तो जैसे लेंस पर वो किरणें पड़ते हैं, सोलर किरणें पड़ते हैं सूर्य की, वो लेंस से जब ट्रांसफर होती है वो लेजर किरणें अर्थात शक्तिशाली किरणें बनती हैं, और फिर ऐसी शक्तिशाली किरणें एक बिंदु पर आत्मा पर एक बिंदु पर पड़ती हैं तो प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और स्थूल अग्नि प्रज्वलित होती है। अगर ये पेपर के ऊपर मैग्नीफाइंग लेंस पकड़ते हैं, थोड़ा भी हिल जाता है, गर्मी में पकड़ा हुआ है फिर हिल जाता है, तो भी ऐसी अनुभूति आपको नहीं हो सकती है। तो ये अभ्यास की बात है, संपूर्ण एकाग्रता के साथ बाबा को हमें याद करना है, फिर आप देखना कितना सुंदर अनुभव आपको बाबा कराते, बात मत पूछो, समझा। तो हमने ये अभ्यास कलप कलप किया हुआ है, क्या है भाई, हमने ही किया है, किसी और ने नहीं किया, हमने ही किया है। उसके बहुत सुंदर यादगार भक्ति मार्ग में है, बताइए कौन सी है, हाँ जी, हाँ ज्वाला देवी के रूप में, हाँ जी बोलिए भाई लोग। उसकी बहुत सुंदर यादगार है, गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, धनुष बाण किसी अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना, वो शिक्षा विद्या सिखा रहे थे, उसके सहपाठी भी उसके साथ थे अर्जुन के साथ। एक दिन उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, उसके लिए क्या किया, एक वृक्ष की डाल पर आर्टिफिशियल पंछी को डांगा और फिर उन्होंने को लक्ष्य दिया कि आंख पंछी की आंख में जो काली पुतली है, आई बॉल है, उस पर आपको तीर मारना है, ये लक्ष्य दिया गुरुजी ने। तो फिर उसको सहपाठी को बुलाया, इधर आओ भाई, आपको क्या दिखाई देता है, हाँ पंछी भी दिखाई दे रहे हैं, आंख भी दिखाई दे रहा है, फिर वो जैसे कि दाल भी दिखाई दे रहा है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, फिर अर्जुन को बुलाया, अर्जुन को पूछा कि भाई आपको क्या दिखाई देता है वहां, अर्जुन कहता है कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, केवल और केवल वो आई बॉल, काली पुतली पंछी की आंख में ना वही मुझे नजर आ रही है, बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके कहा तीर मारो, तीर जैसे मारा लक्ष्य को भेदा और पास विथ आनर हुआ। नाम क्या था उसका? अर्जुन। बाबा कहते कोई अर्जुन वर्जुन होकर नहीं गए, आप सारे अर्जुन यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत मेहनत आपने, हर क्लब तक तालियां भी नहीं बज रही, क्या बात है। समझा? हमें केवल रिपीट करना है और कुछ नहीं करना है। क्लब पहले हमने ही यह अभ्यास किया हुआ है, अनेक बार किया हुआ है, अभी केवल रिपीटेशन उसका करना है हमको। तो रिपीटेशन ही करना है, नई बात कुछ है ही नहीं। तो एकदम हल्के फुल्के रहे और बिल्कुल खुशी में रहे और उसको अभ्यास करते रहे। समझा? तो ऐसा एकाग्रता के साथ ज्ञान सुरेश बाबा को बुद्धि रूपी नेत्र से हम जब देखते हैं तो ज्ञान सूर्य की जो किरणें हैं वो प्रखर किरणें आत्मा में परिवर्तन होती है, प्रवेश होती है। और जैसे बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को देखते हैं, वो बाबा की जो किरणें हैं ज्ञान सूर्य की, वो बुद्धि रूपी लेंस से पास होती है, लेजर किरणें बनती हैं। और ऐसी लेजर किरणें आत्मा पर पूरी एकाग्रता के साथ पड़ती हैं तो प्रचंड योग की ज्वाला धधकने लगती है, योग की अग्नि धधकने लगती है। उस अग्नि में, उस योग की ज्वाला में हमारे विक्रम भस्म होते हैं। समझा? तो इसलिए पूरी एकाग्रता के साथ हमें बाबा को देखना है, दिव्य चक्षु से बाबा को देखना है। तो योग में क्या करते हैं हम? योग बुद्धि रूपी नेत्र से देखते हैं ना बाबा को। कहीं पूछते हैं आपका योग में क्या प्रोग्रेस है, हैं जी, कितने साल से आप कर रहे हैं अभ्यास? 11 साल से। आपका क्या प्रोग्रेस है बताओ, कोई पूछेगा आपको तो क्या बताएंगे? देखो योगाभ्यास में होता क्या है, हमारा भान का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 100% में से कुछ परसेंट बाबा पर होता है, कुछ परसेंट इस साकारी दुनिया में होता है। मान लीजिए आप 10 साल के बाबा के बच्चे हैं तो 60-70% भान बारमधाम में बाबा के साथ होता और यहाँ 30-40% यहाँ होगा साकारी दुनिया में। अभी और उसको ट्रांसफर करना है, जितना ट्रांसफर करेंगे उतनी योग की गहराई आपकी बढ़ती जाएगी, योग की क्वालिटी बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, ठीक है ना? तो अभ्यास की बात है और कुछ नहीं है। एकाग्रता एकाग्रता, अभ्यास करते रहे, बढ़ाते रहे। तो परम धाम में 100% भान से बैठना और 0% भान यहां रहना, उसको कहेंगे सबसे शक्तिशाली योग की अनुभूति करना। ब्रह्मा बाबा को जब कर्मादि स्थिति थी, बाबा के नैनों को देखकर ऐसा लगता था बाबा तन से केवल यहां बैठे हैं, मन से 100% परम धाम में शिव बाबा के पास बैठे हैं। बाबा की आंखें बताती थी, बोलती थी बाबा यहां नहीं है। तो ये कर्मादि स्थिति की निशानियां हमने ब्रह्मा बाबा के जीवन में देखी। हमें केवल उसको रिपीट करना है ना भाई, अभ्यास में लाना है, रिपीट करना है। तो ऐसी योग की अनुभूति करना चाहेंगे भाई? सभी एकदम चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। 15-20 मिनट ऐसी पावरफुल ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करेंगे, एकदम खो जाएंगे, ठीक है? ओम शांति। मास्क वास सब निकाल दो थोड़ा, अभी बंद, थोड़े समय के लिए आजाद हो जाओ, बंधन नहीं, आजाद पंछी उड़ता है ना भाई। ओम शांति। इस देह रूपी मकान में मैं निराकार ज
ज्योति, बिंदु, आत्मा, मकान, मालिक। ब्रकोटी के मध्य आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हो, मैं आत्मा मकान मालिक पवित्र स्वरूप हूं। पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, पवित्रता का सुंदर ताज मौज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने धारण किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। सचमुच मैं कितनी नसीबवान आत्मा हूं जो अपने सत्य स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को दिव्य चक्षु से स्पष्ट देख रही हो और अनुभव भी कर रही हो। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूं। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता भगवान हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते थकते ही नहीं है। मेरा भाग्य बुलंदियों पर है, मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी चैतन्य मकान से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही जगमग हुई आत्म ज्योति उड़ती हुई ज्योति धाम की ओर जा रही हूं। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। फरिश्तों की निराली दुनिया में पहुंच गई हूं जहां चारों ओर सफेद 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 दिव्य प्रकाश प्रकाश है, पवित्रता ही पवित्रता है। मौज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी
कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबल भी उनके ब्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को दृष्टि से निहाल कर रहे हैं, नजर से निहाल कर रहे हैं। बाबा की दृष्टि से मैं फरिश्ता असीम प्यार अनंत शक्तियां ग्रहण कर रहा हूं। बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में लिपट चुका हूं। समा चुका हूं परम सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा के नैनों से स्नेह के मोती झर रहे हैं। सकेले दे बच्चे मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, ओहो निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम। ओ मेरे प्राणों के प्राण मेरे प्राण नाथ सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मौजातम ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य नेत्र से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं, जी भर के देख रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। बाबा ज्ञान सूर्य है,
आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, हजारों सूर्यों से शक्तिशाली हैं, शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य परमात्मा से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मोस आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य पिता से प्रचंड शक्तियां आनंद शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। और योग की ज्वाला में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं, मेरे पुराने संस्कारों का संस्कार योग अग्नि में हो रहा है, होता ही जा रहा है। मैं आत्म ज्योति एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। ज्ञान सूर्य को एक टक देख रही हूं, ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूं, अनंत शक्तियों को स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी शक्तियों से भरपूर हो रही है, चार्ज हो रही है। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति ज्योति सागर शिव पिता से महामिलन का आनंद ले रही हूं। वाह मैं, वाह मेरे बाबा, वाह मेरा भाग्य। शक्तियों से भरपूर आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं, आ रही हूं। और पुनः इस शरीर रूपी चैतन्य मकान में ब्रुकटी के अकाल तख्त पर स्वमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूं। मस शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही, वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। मोज चैतन्य आत्मा रूपी अगरबत्ती से दिव्यता की सुगंध चारों ओर इस वायुमंडल में फैल रही है, वायुमंडल सुगंधित बनता जा रहा है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूं, निराकार ज्योति बिंदु।
मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, दमक रही है, अष्ट शक्तियों की चमक मस्तक मणि आत्मा से चार और फैल रहे हैं। ओम शांति।